की भाषा जो समझे अंतर का सुख वो पाता है, मौन की भाषा जो समझे।
ओम शांति। आप सभी बाबा के बच्चे, सर्वशक्तिवान बेहद बाप के बच्चे, जिनों की संख्या अब बेहद में जा रही है, ऐसे बेहद में रहने वाले आप सभी मौन की भाषा जानते हैं। गीत सुना, मौन की भाषा जो समझे, क्या था आगे? हाँ, मौन की भाषा जो समझे, बोलो। अंतर का सुख वो पाता है। तो आप सभी मौन की भाषा जानते हैं, जो कहते हैं हाँ वो हाथ उठाए, या तो बड़ा आवाज आना चाहिए जैसे ओम शांति का, नहीं तो हाथ उठाइए। देखो भाई, जरा धीरे धीरे। हाँ, मौन की भाषा अर्थात अंतर्मुखता की गुफा। गुफा कैसे होती है? गुफा बहुत अंदर होती है, और जैसे अंदर जाएंगे गुफा में तो नहरों होती जाएंगी, बाहर से बड़ी नजर आएंगी। होता है ऐसा? आता है गुफा का रूप सामने? हा? आज की टॉपिक अंतर्मुखता की गुफा। हमारा ब्राह्मण जीवन कहे कि ये अंतर्मुखता की गुफा है। हा? जब आप सभी पहले पहले इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए होंगे, और जब आपको ये 7 दिन का कोर्स कराया गया होगा, तो याद करो जैसे जैसे सुनते गए वैसे वैसे उस पर विचार करते रहे, या एक बार सुन करके छोड़ दिया? अगर जो रुचि से आए होंगे, जिनों का ध्यान होगा, और जिनों को ये बातें अच्छी लगी होंगी, वो जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसे वैसे उसको अंदर में सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। तो अंतर्मुखता शब्द का अर्थ है अंदर का मुख। अंदर का मुख कौन सा है? हाँ, शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। शरीर आत्मा की शक्ति से बोलता है। तो अंदर का मुख क्या हो गया? कि अंदर हमारे आत्मा बैठी है, तो हमें अपने अंदर अंदर के मुख को देखना है, आत्मा को देखना है। क्योंकि जब हमें ये पहले परिचय मिलता है कि मैं कौन हूँ, यह परिचय हमें स्वयं के अंतरक भेजता है कि जो मैं हूँ और जैसी मैं हूँ। बाबा जो हमें बताते हैं, हे बच्चे, हे आत्माएं, तो मैं आत्मा हूँ जो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती हूँ, परंतु इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हर कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली, वही गुप्त जो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है, वह गुप्त आत्मा है। तो हमें इस शरीर में रहते बाहर का मुख बाहर से दिखाई पड़ता है, परंतु जो हम अंदर आत्मा विराजमान है, हमें अपने उस अंदर के मुख को देखना है। अब अंदर का मुख देखने के लिए भी हमें अंतर्मुखता चाहिए। अंतर्मुखता अर्थात अंदर ही अंदर, अपने आप को सोचना, अपने आप को देखना, अपने आप से बातें करना, क्योंकि चैतन्य शक्ति आत्मा है। यह शरीर और शरीर की कर्म इंद्रियां चेतन नहीं है, ये तो जानते हो ना। शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, तो पांच तत्व चेतन नहीं है, वो तो जड़ है। परंतु इन जड़ का बना हुआ, तत्वों का बना हुआ ये शरीर, उसमें जब मैं चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान होती हूँ, तो जब विराजमान उसके अंदर होती हूँ तो गुप्त हो जाती हूँ। अब उस गुप्त को इस बाहर के प्रख्यात इतने बड़े शरीर से कैसे देखें? गुप्त है, तो उसके लिए जो आत्मा की चेतन शक्ति मन और बुद्धि है, जो मन बुद्धि इस शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराते रहते हैं, तो उसी मन बुद्धि के द्वारा, अर्थात जब हमें ये पहचान मिल जाती है, उसी पहचान को हमें अंदर ही अंदर सोच करके, अच्छी रीत समझ करके, और अपने को ये अनुभव करना है कि मैं इस शरीर में विराजमान, शरीर के कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली आत्मा हूँ। एक रीति से तो हमको कार्य कराने वाला करण करावनहार बाप है, बाप है करण करावनहार, और हम बच्चे हैं करणहार। जो कार्य बाप ने दिया है वो हम करते चले, तो कार्य के लिए हमें ये याद रहे, कर्म में ये याद रहे कि करण करावनहार बाप हमसे ये कार्य, कौन सा? नई दुनिया बनाने का। वो बाप हमसे कार्य करा रहे हैं, पर वो कार्य हम यथार्थ रीति से करेंगे तब जब हम स्वयं के यथार्थ रूप को जानेंगे। और वो गुप्त होने के कारण हमें अंतर्मुख रह करके, देखो आज की टॉपिक अंतर्मुखता की गुफा, गुफा मना अंदर ही अंदर वो गुप्त होती है, बाहर में वो नहीं दिखाई पड़ती। तो हम जो अंदर आत्मा रहती है, वो कहाँ है, कैसी है, उसकी क्वालिटीज क्या है, और उन क्वालिटीज से मुझे इन शरीर की कर्म इंद्रियों से कैसे कर्म कराना है, इन सब बातों को अच्छी रीत से समझने और समझ कर करने और कराने के लिए हमें अंदर ही अंदर इन बातों को अच्छी रीत सोचना पड़ता है। सोचना माना जब हम उसको सोचें तो हमें अच्छी रीत समझ में आएगा, क्योंकि अनेक जन्मों से हम बाहर मुक्ता, जो कुछ बाहर दिखाई पड़ता है, जो कुछ बाहर की ये कर्म इंद्रियां है, उनसे काम कराते रहते हैं। उस समय हमें ये स्मृति नहीं है कि शरीर से काम कराने वाली मैं आत्मा हूँ, परंतु अभी बाप ने पहचान दी है, तो इस स्मृति के साथ हमें ये याद रहना चाहिए कि इस शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा को किस प्रकार का कर्म करना है, आत्मा को किस प्रकार का चिंतन करना है, यह बातें हमें सदा याद रहे, और उस याद के साथ हम अपने जीवन के कर्मों में लाते रहें, इसके लिए हमें अंदर ही अंदर इन बातों को अच्छी रीत से समझने का प्रयत्न करना है। क्योंकि समझ केवल मुख से बोलने से नहीं आती है, परंतु समझ जो कुछ हम सुनते हैं उसको जब अच्छी रीत अंदर ही अंदर मनन करते हैं, अंतर माना अंदर, तो अंदर तो हमारी वो चेतन शक्ति विराजमान है, तो अंदर देखो कितनी ऊंची चीज बैठी है, अंदर हमारी चेतन शक्ति आत्मा विराजमान है, और वो आत्मा कितनी ऊंची है, ऊंचे ते ऊंचे सर्वशक्तिवान भगवान की संतान है। अब इतना ऊंचा मर्तबा बाप तो है ही ऊंचे ते ऊंचा, परंतु हम आत्मा उस सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो हम आत्मा भी इतनी ऊंच ते ऊंच बाप की बच्ची, हम भी इतने ऊंचे हैं। तो हमें इन बातों को अंदर ही अंदर, अंतर्मुख माना अंदर ही अंदर इन बातों को सोचना है, क्योंकि मन भी अंदर गुप्त है, बुद्धि भी अंदर गुप्त है, और इन सब मिली हुई शक्तियों का समूह वो है आत्मा, उसको आत्मा कहा जाता है। तो टोटल आत्मा ही अंदर गुप्त है, जिसको देखा नहीं जाता है, और वो आत्मा भी अविनाशी अनादि है। अपना इस शरीर के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती ही रहती है। चलो एक शरीर की आयु पूरी हुई तो दूसरा ले लेती, दूसरे की पूरी हुई तो तीसरा लेती, इस रीति से कर संस्कारों के अनुसार ये जन्म लेकर के और अपने अपने कर्म करती रहती है। अब बाप ने हमें यह शिक्षा दी है, हमें कर्म कौन से करने हैं, सत्य कर्म कौन सा है, श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, और किस आधार पर भ्रष्ट कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से दुख मिलता है और हम दूसरे को दुख देते हैं, वह कर्म श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, परंतु वह कर्म भ्रष्टि कहेंगे, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं, न किसको सुख दे सकते हैं, न स्वयं उससे सुखी होते हैं। तो जब हम वो कर्म करें, बाप हमको वो श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं जिससे हम स्वयं भी सदा सुखी है, खुश है, और हम फिर वो दूसरों से शेयर करके उनको भी उस सुख का अनुभव कराते हैं। जब इस प्रकार हमारे समझ में ये बात आ जाती है, तो हम उस सेवा में लग जाते हैं। जब पहले पहले सेवाओं में लगते हैं, तो ये स्मृति हमारी सदा काल बनी रहे, इस शरीर को चलाने वाली, इसके अंदर मैं चैतन्य शक्ति सर्वशक्तिमान भगवान की बच्ची इस शरीर के अंदर विराजमान हूँ, इतना स्मृति में हम लाएं, जो उसको स्मरण करते करते हमें खुशी का पारा चढ़ जाए। बाप हमें ये स्मृति क्यों दिला रहे हैं कि बच्चे बहुत दुखी हो गए हैं, विस्मृति में के कारण दुख का शिकार बने हुए हैं। अब इन दुखों से छूटे कैसे, कितने भी पाठ पूजा करो, कितना भी और प्रयत्न करो, यात्राएं करो, पर कर्मों का खाता कहा जाता है, जो करता है वो ही भोगता है। इसलिए हमें ये याद रहना चाहिए कि इस ब्राह्मण जीवन के अंदर हमें बाबा ने वो शक्ति दी है, जिस बात को हम पूरा कल्प नहीं जानते थे, अब हम उस शक्ति के आधार से अपने पूरे 84 जन्मों को भी जान लेते हैं और अपने पूरे चक्कर को भी समझ लेते हैं। इन सब समझने का भाव अर्थ बाबा कहते हैं, बच्चे जो तुम आदि काल में थे फिर से आप तुम्हें आदि काल वाला रूप बनना है। भल अब ये नहीं समझते हैं कि हमने वो लिया था, परंतु जैसे जैसे बाबा हमें समझाते जाते हैं और जैसे जैसे उस पर विचार करते जाएंगे, तो आप लोगों को प्रतीत होगा, महसूस होगा बरोबर हम ही सो देवी देवता थे, अब हम ही फिर आकर के इस पतित दुनिया में पतित बन गए हैं। बुराइयां हमारे अंदर कितनी आ गई है, बरोबर हमें बुराइयों को छोड़ना है। आत्मा जब परमात्मा की संतान है, परमात्मा सर्व का सुख दाता है, दुख हरता सुख करता, ऐसे पिता की मैं संतान हूँ, मुझे भी सर्व को सुख देना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन करके अगर हम अपने पुरुषार्थ में लग जाते हैं, तो वह पुरुषार्थ हमें अधिक बाहर मुक्ता में नहीं लाएगा, क्योंकि हमको नॉलेज बड़ी ऊंचे से ऊंची मिली है, जो नॉलेज हम पहले नहीं जानते थे। जब कोई ऊंची चीज मिलती है और जो कहां भी न देखी हो, तो जरा उसको देख के अंदर में सोचते हैं, सचमुच ये क्या चीज है, इतनी वैल्यूएबल चीज और हमें मिली है, तो हम उसको बड़ा संभाल से रखेंगे। ये सृष्टि का नियम है। तो हमें भी अपने अंदर में ऐसा उमंग, ऐसी जागृति, ऐसी सदा स्मृति बनी रहे कि बाबा ने जो हमें ये नया ज्ञान, नई समझ दी है, उस समझ को हम अच्छी रीत समझ करके उसका हमें अनुभव करना है। जो वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, जो इतनी महीन है, वह बड़ी शक्तिशाली है, और उस शक्ति को हम तब धारण कर सकते हैं जब हम स्वयं उस बात को अच्छी रीत से पहचान करके अपना लेंगे। उसके लिए हमें अंतर्मुखता की जरूरत है। अंतर्मुखता को गुफा इसलिए कहा गया है क्योंकि गुफा में मनुष्य क्यों जाते हैं, साधु संत महात्माएं घर बार छोड़ के गुफा में क्यों जाते हैं? हाँ, पता है क्यों जाते हैं? बोलो बोलो, क्यों जाते हैं? अभी इतना सब कट्ठे बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, सबका एक जैसा आवाज नहीं है, जवाब एक जैसा नहीं लगता है। तो गुफा में क्यों जाते हैं? भले लक्षणों का होता है हम भगवान से मिलें, पर उस मिलने के लिए वो जानते हैं कि हमें उसके लिए घोर तपस्या करनी है। तो ये हमारा ब्राह्मण जीवन तपस्वी जीवन है। हमें इस बात को अच्छी रीत से समझना और उस पर हमें अभ्यास करना जरूरी है कि ये हमारी ब्राह्मण जीवन वास्तव में तपस्वी जीवन है। और तपस्या के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, याद है? त्याग, तपस्या और सेवा। बाबा हमेशा ये तीन शब्द बोलते हैं। तो त्याग किसका? जो कुछ पुरानी दुनिया नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी नई चीज शक्तिशाली चीज को अपनाना है तो उसके लिए हमें उस पर पूरा ध्यान देना है। जब तक उसको हम पूर्ण रूप से अपना न लेंगे। और तपस्या क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत समय अनेक जन्मों से हम जो कुछ बाहर से हमें दिखाई पड़ता है, बाहर की वस्तु कहो, बाहर के देह के संबंध कहो, अथवा पुरानी अपनी पुरानी देह के संबंधित अपने पुराने अनेक जन्मों के संस्कार, अब ये सब बातें जो हमारे में भरी हुई है वो सब हमारे से निकल जाए और हमारे अंदर एक ही लगन लगी रहे। क्योंकि जब हमारी लगन सर्वशक्तिवान बाप के साथ है तो वो लगन हमें सुख देती है, उस लगन से हमें आनंद मिलता है। बल्कि वो लगन हमारा ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देती है, रोशनी आ जाती है। कौन सी? मैं कौन और किसकी संतान? क्योंकि ये तो हम जानते हैं, अभी बाप हमारा ऊंचे ते ऊंचा है, बाप ने जो हमें नॉलेज दी है वह भी ऊंचे ते ऊंची नॉलेज है, और इस नॉलेज के द्वारा प्राप्ति भी ऊंचे ते ऊंची है। अब जब इतनी प्राप्ति भी ऊंचे ते ऊंची है, वो हमें करनी है, ऐसी प्राप्ति हमें करनी है। कैसे करेंगे? इस ऊंचे ते ऊंची नॉलेज के द्वारा। पर वो नॉलेज जब तक मैंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाई नहीं है, जिसको कहा जाता है कि बाप ने हमें वो नॉलेज दी है जिससे हमारी जीवन में सद्गुण जागृत होते हैं, दिव्य गुण, पवित्रता की शक्ति। जब ऐसी बातें हमारे जीवन में जागृत होती है जो हमारे में नहीं थी, अब मैं ये नहीं कहेंगी नहीं है, क्योंकि अभी तो आप सब ब्राह्मण कुलभूषण है ना, हाँ, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बैठी है जिन्होंने इस नॉलेज को समझा है। परंतु हमें अपने आप से पूछना है, जो कुछ हमने समझा है, जितना समझा है उतना बरोबर हमने अपने जीवन में धारण किया है। सर्वशक्तिवान ऊंचे ते ऊंचे बाप के हम बच्चे हैं। मैंने अपने जीवन में क्या क्या ऊंचाई लाई है? मेरे बुद्धि के अंदर चलो नॉलेज, सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज तो समझ में आ गई, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्कर चलता रहता है, इसके अंदर जन्म मरण के चक्कर में हम आते हैं। परंतु अभी जो समय है, जब हमें सर्वशक्तिवान भगवान ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है, बाप जानता है बच्चे आज की कलयुगी दुनिया में बहुत दुखी है, बहुत अशांत है, शांति चाहते हैं पर पूरा रास्ता मिलता नहीं है। इसके लिए बाप हमें वह सच्ची शांति का रास्ता बताते हैं, अर्थात हम जो है और जैसे हैं, जो थे क्या थे, याद है बाबा ने क्या बताया था, क्या थे हम? सत्युग आदि में जब सृष्टि पर आए तो हम क्या थे? सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी देवता थे। और अब क्या बन गए हैं? अब उसके विपरीत अब बाप मिला है। किस लिए? कि फिर से बचे तुम जो थे सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर से अपनी जीवन को ऐसे बनाओ। अब जीवन बनाने के लिए पहले हमें ऐसी ऊंचे ते ऊंची बाप की ऊंची नॉलेज को अच्छी रीत से समझ करके अपने जीवन के कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म में लाना है। क्योंकि जितना जितना जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा, अर्थात वैसे ही हमारे संस्कार बनेंगे। और जैसे संस्कार बनेंगे ऐसी ही हमारी जीवन और जीवन के अंदर कर्म होते रहेंगे। इसलिए अब इस संगम युग को वो महत्व है, जितना जितना हम अंतर्मुख अर्थात अंदर ही अंदर हमें अपने आप से बातें करनी है। गीत कहता है मौन की भाषा, मौन की भाषा हम अंदर से साइलेंस में रहे, शांति में रहे, अर्थात मन हमारा एकाग्र रहे। इसके लिए हमें इस बात पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है। बरोबर कहा तो जाता है कि मन बड़ा चंचल है, कभी चिप करके बैठ नहीं सकता है, परंतु हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, हमारा मन चंचल नहीं होना चाहिए। हमें बुद्धि में इस लक्ष्य को जागृत करना है। वास्तव में मन मेरी संकल्प शक्ति है। शक्ति कहा जाता है जिससे कोई अच्छा कार्य होता है। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, महान शक्ति है। फिर से मेरा मन ऐसे महान शक्तिशाली बन जाए, अर्थात हमारे अंदर वह श्रेष्ठ संकल्प जागृत हो जिससे हम स्वयं भी सुखी, अर्थात जो भी कुछ हमें आंखों से दिखाई पड़े या जो भी हलचल हो उस हलचल को देखते हुए भी हमारा मन अचल स्थिर हो। मन के अंदर हमारी जो कुछ बाहर दिखाई पड़ता है उसकी हलचल हमारे मन के अंदर न हो, ऐसी शक्ति हमारे में तभी जागृत होती है जब हम स्वयं के सच्चे स्वरूप की दिव्य क्वालिटीज को हम अपने कर्मों में ले आते हैं। जब तक उन कर्मों को, जब तक उन क्वालिटीज को हमने अपने कर्मों में नहीं लाया है तब तक हमारी जीवन श्रेष्ठ बनी है ये हम दावा से नहीं कह सकते। कर्मों का आधार हमारे संकल्प शक्ति पर है। और अगर इसको और महीनता से सोचो तो संकल्प शक्ति का आधार हमारी स्मृति पर है। इसलिए बाबा हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं, हे बच्चे तुम ही सो देवता थे। तुम कितने ऊंचे थे, कितने पवित्र थे, कितने शुद्ध थे। माया के संग में धीरे 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 वो पवित्रता, वो शुद्धता, संग के रंग में हमारी कमती होती गई, कमती होती गई, कमती होती गई, और आकर हमारे से वह दिव्य गुण छूट गए। जब दिव्य गुण हमारे से छूट गए तो कौन सी प्रवेशता हुई? वे बदल करके आसुरी गुण, अर्थात जिससे हम स्वयं भी दुखी और हमारे से दूसरों को भी दुख ही मिलता रहता है। अभी बाप हम बच्चों से यही चाहते हैं। बच्चे अभी आप बाप के सन्मुख हो, तुम्हें बाप मिला है, बाप ने तुमको इतनी ऊंची नॉलेज दी है, तुम्हारे अंदर सारा दिन ये स्मृति बनी रहे, तो देखो आपके विचारों में कितनी शुद्धि आ जाती है। एक तरफ शुद्धि, दूसरी तरफ शुद्धि का प्रमाण सफलता। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सफलता मूर्त हो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और वो जन्म कौन सा? वह लौकिक जन्म नहीं जो लिया है, जिसमें बड़े हो चुके हो, परंतु ये जन्म जो हमारा दिव्य जन्म हुआ है, ब्राह्मण जीवन का जन्म, जिसको मर्जीवा जन्म कहते हैं, जिसको ध्वज जन्म कहते हैं, यह हमारा जन्म वैसे तो गाया जाता है परमात्मा के लिए, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, माता भी आप है तो पिता भी तुम है। माता के समान हमें पालना मिलती रहती है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे अपनी दिनचर्या चलानी है। अब ये सब बातें जो रोज रोज हम सुनते हैं, अंतर्मुख होके अंदर ही अंदर हम अपने आप से पूछे, अपने से बातें करना अंदर होती है, मुख से बात करेंगे तो बाहर से करेंगे, कोई हमारे सामने हो जिससे हम बात करें, परंतु बाप भी गुप्त है और हम आत्मा भी गुप्त है। अगर मुझे बाप से बातें करनी है तो भी अंदर ही अंदर करनी है। जितना हम अंतर्मुखी होकर के बाहर के आवाज से पर, बाहर का स्वयं का आवाज भी काम, और बाकी जो भी आवाज है, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज, अनेक प्रकार की आवाज, इन सब आवाजों से हमें स्वयं को, अर्थात अपने मन बुद्धि को इन सब आवाजों से परे कर देना है। तो आवाज सुनते भी हम उनसे पर रहे, यह हम तब कर सकते हैं जब हमको ये अभ्यास है, बैठे बैठे, देखते देखते, कर्म करते हुए, चलते फिरते, हम अंदर ही अंदर अपनी चैतन्य शक्ति आत्मा को जागृत कर ले और अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत करें जिन शक्तियों के आधार से ये हमारी कर्म इंद्रिया सुचारू रूप से जीवन में अपनी धारणा बनाती जाए। क्योंकि बाप का ज्ञान बड़ा ऊंचा और शुद्ध है, इसकी प्राप्ति बहुत ऊंचे से ऊंची है, तो ये हमारा ब्राह्मण जीवन अगर हम ये कहें कि ये हमारी जीवन ही एक गुफा के समान है, इसी जीवन में हम अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करें, इसी जीवन में हम अंदर ही अंदर अपने मन बुद्धि को अपने बाप के साथ जुटा करके उनसे वो शक्ति का अनुभव करें, जिस शक्ति के आधार से हम माया पर विजय पा सके। माया अर्थात ये पांच विकार, पांच विकार हर एक में है, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में। जब तक शरीर का बंधन है तो ये शरीर का बंधन अभी अनेक जन्मों के खाते के अनुसार कई बातों से संबंधित है, परंतु हमें बाप ने स्मृति दिलाई है कि तुम याद करो, तुम ही सो देवता थे, अब फिर से तुम्हें देवता बनना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप तुम्हें वो नॉलेज दे रही है जिससे तुम सर्वदैवी गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी देवता बनते हो। अब इतना ऊंचे ते ऊंचा स्टेटस, इतनी ऊंचे ते ऊंची नॉलेज, तो आप सोचो हमें उस पर कितना विचार करना चाहिए और कितना खुशी खुशी से अंतर्मुखता को धारण करना। कोई ऐसा नहीं है कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, अंतर्मुखता जितनी जितनी हम धारण करेंगे हमारी आत्मा के अंदर शक्ति जागृत होती जाएगी। जितनी हम आत्मा शक्तिशाली बनेगी उतना जो पूर्व का खाता है वो भस्म होता जाएगा, चुप्त होता जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर यह लक्ष्य जरूर रखना है कि हमें इस जीवन में रहते अपने को ऊंच से ऊंच देवता बनाना है जरूर। बल भविष्य रूप हमारा देवता प्रत्यक्ष दुनिया के आगे रहेगा, अभी हमारा वो स्वरूप गुप्त है, परंतु गुप्त होते भी मैं आत्मा जो गुप्त हूँ वो जानती हूँ, मानती हूँ और ऐसा बनना चाहती हूँ। तो जब ऐसा बनना चाहती हूँ तो जो बनने की विधि बाबा हमें बताते हैं उस विधि को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में दैवी गुणों की धारणा अर्थात देह में होते देह भान बिल्कुल खत्म, जब इस प्रकार की स्मृति सदा अंदर जागृत रहे, हम स्वयं को ऐसे समझे मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, ये शरीर का मस्तक का भाग अकाल तख्त और अकाल आत्मा जिसको काल कभी खा नहीं सकता है, वो अपने हिसाब किताब पूरा होने से अपने शरीर से अलग हो जाती है। तो ये शरीर से अलग होने की विधि और उसका अभ्यास, इसके लिए हमें अंतर्मुखता की आवश्यकता है। अंतर्मुखता को हम गुफा के रीति से, जैसे गुफा में अंदर बैठ जाते हैं, बाहर का कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बाहर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, ऐसे हम अब संगम युग पर ब्राह्मण जीवन में होते, हम समझे ये हमारी ब्राह्मण जीवन है ही तपस्या के लिए। तपस्या का ये भी मतलब नहीं है कि बस हमें एक जगह आसन लगा के बैठ ही जाना है। अंदर की तपस्या, मन तपस्या में लगा हुआ हो, एक रस एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए, और वो श्रेष्ठ संकल्प जो बाप ने हम बच्चों को दिए हैं, हमें बाप ने बहुत सम्मान दिए हैं, तू मास्टर सर आप अपने समान स्वमान, बाप सर्वशक्तिमान, हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान, बाप हमारा सारी सृष्टि का बीज रूप, उससे ये सारा जार सृष्टि का निकलता है। और इसी प्रकार से हम स्वयं को रचता बाप की संतान, मास्टर रचता समझ करके जैसा बाप कर्म करते हैं, हमें भी बाप जैसे कर्म करने हैं, ऐसा लक्ष्य हमारे अंदर पक्का हो, इसको सहज बनाने के लिए बाबा ने अभी हमें सहज विधि दे दी है कि बाप दादा के 10 कदम। अब उन कदमों पर हमें कदम रख के चलना है, जिसमें देखो ये हम बाबा की कहानी से सुनते हैं, कोई भी बाबा के सामने आते थे, बाबा की उसके पर दृष्टि ये बच्चा है, बच्चे बच्चे कह के बात करते थे, उसकी जो भी बुरी ख्यालात, जो उसको वैर का भान, वैर जो उसके मन में भरा हुआ हो, वो बाबा की मीठी दृष्टि से उसका वैर खत्म हो जाता है। अब हम किसको देखें, उसको दिखाई तक स्थूल दिखाई नहीं पड़ता है, और बाबा की शक्ति लाइट रूप में दिखाई पड़ती है। हम बच्चों को भी ऐसा स्वयं को लाइट रूप बनाना है, जो जो हमें देखे उसको हमारे से हमारी इजीनेस, हमारी लाइट दिखाई पड़े। इसलिए सदा हमें याद रखना है, जितना जितना देखो, कल भी दादी ने बोला था सबको, यहाँ आए हो तो आपको अंतर्मुख रहना है। जितना हम अगर मधुबन में आने का फायदा लेने चाहते हैं, जो जो हम सुनते जाएं, जो जो हमको लक्ष्य मिला हुआ है, उस लक्ष्य को बार बार स्मृति में लाकर उनकी जो विधियां हैं, समझो हम यहाँ आए हैं, हमें आपस में दुनिया की कोई भी प्रकार की बात करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, यहाँ कोई भी हम दुनियादारी का काम नहीं कर रहे है, न करना है, न कर सकते हैं। फिर वो दुनियादारी की बातें बैठ के सुने, उसका फायदा, इसलिए सदा हमारा ध्यान रहे बाबा ने जो नई नई विधि बताई है, यादों का अभी बाबा ने संडे की अव्यक्त मुरली में रिवाइज कोर्स में जो बाबा से हमें वरदान मिलते रहते हैं, उन वरदानों को कैसे वृद्धि में लाया जाए, वो वरदान हमारे जीवन के कर्मों में हमें अनुभव हो, उन वरदानों से हमारी जीवन में उन्नति नजर आती रहे, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। बाबा कहते हैं, एक तरफ कहते हैं मुझे याद करो, साथ साथ कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो। मुझे याद करने की बाबा ने कितने प्रकार से विधि बताई है। स्वमान को स्मृति में रखो। जब मैं स्वमानधारी हूं तो मेरी नजर सबके प्रति सम्मान भावनाओं की रहेंगी, और जब सम्मान भावनाएं हैं तो हमारी हर एक के प्रति बड़ी ऊंची नजर, ऊंची भावनाएं। जब हमारी दृष्टि ऊंची है तो जरूर है हमारी वृत्ति इतनी ऊंची बनी हुई है, क्योंकि दृष्टि का वृत्ति से कनेक्शन है, वृत्ति का स्मृति से कनेक्शन है। बाबा ने हमें इसलिए स्मृतियां दिलाई है हम कौन थे, तो वो स्मृति लाकर देखना है, अंदर ही अंदर विचार करना है, अंतर्मुख रह के क्या करेंगे, जो हमें बाहर बात करने की आवश्यकता न लगे। काम से काम किया, जहां जरूरत हुई वहां बात किया, बाकी हम अपने उस अंतर्मुखता में रहे। वो हम तब रह सकेंगे जब जो जो बात बाबा कहते हैं उसको अंदर ही अंदर सोच करके उसे फायदा मेरे को जीवन में क्या है, किस प्रकार से मैं उसकी प्राप्ति बढ़ाती जाऊं, इस प्रकार से हम जितना अंदर अंदर सोचेंगे, हमारी बुद्धि के अंदर शुद्ध विचार इकट्ठे होते जाएंगे, संकल्प हमारे श्रेष्ठ ऊंचे बनेंगे। कहा जाता है ऊंचे विचारों से हमारे कर्मों में ऊंचाई आएंगी, और ऊंच कर्म, श्रेष्ठ कर्म जिसकी प्रारब्ध हमें श्रेष्ठ प्राप्त होंगी। कहा जाता है जैसा कर्म वैसा ही उसका फल। श्रेष्ठ कर्मों के लिए श्रेष्ठ विचारों की आवश्यकता है, और श्रेष्ठ विचार हमको रोज रोज बाबा देते रहते हैं, केवल हमारा इतना अटेंशन बना रहे, और उस अटेंशन को हम सदा के लिए ऐसा बना के रखें। यह बात हमारे ध्यान पे हो, जितना जितना हम अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करेंगे, आपको खुशी का खजाना अनुभव होता जाएगा। यह खुशी भी आपके विचारों में शुद्धता और श्रेष्ठता लाती जाएंगी, और वह श्रेष्ठ विचार आप की आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, वह शक्ति जिससे आपके जीवन में जो भी बुराइयां है, बुरी बातें है, जो नहीं करनी चाहिए, वो शक्ति के आधार से सहज छूटती जाएंगी। आपको याद होगा बाबा हमेशा कहते हैं मैं बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे और मेहनत करके इतना परेशान होते रहे, तो बाबा हमें हमारा स्वमान देते हैं, स्वमान के शान में रहो, तो हमारा दिमाग ऊंचा रहे, विचारों में ऊंचाई आए, और वह ऊंचे विचार जो बाबा हमें रोज रोज बताते हैं, श्रेष्ठ कर्म पहला पहला जो नॉलेज हमें मिली है, बाप का परिचय हमें मिला है, हम दूसरों को भी बाप का परिचय दे करके उनको बाप से बेहद का वर्षा लेने का अधिकारी बनाए। यह बेहद का वर्षा जो बाप के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले। कितनी ऊंची ऊंची बातें बाबा हमें बताते हैं, और अगर वो बातें हम याद रखें तो आप सोचो हमारे दिमाग में कितनी ऊंची बातों से हमारा दिमाग भरपूर हो जाएगा। और वह ऊंचाई से भरपूर दिमाग ऊंच कर्म, श्रेष्ठ भावनाएं, जो श्रेष्ठ भावनाएं हमारा आपस और के प्रति सहयोग की भावनाएं बढ़ाता रहेगा, जिससे कहा जाता है कि यह ईश्वरी परिवार है, एक ही परिवार है। बल यहाँ सृष्टि में भिन्न भिन्न परिवार है हद के, परंतु एक बाप और उसके हम इतने सब एक ही परिवार है, जिसको ईश्वरी परिवार कहा जाता है। तो ईश्वरी परिवार के नाते हमारे अंदर ईश्वरी गुण, सर्व के प्रति कल्याण की भावनाएं। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा, देखो जो बाप का टाइटल वही तुम बच्चों का टाइटल है। बाप सर्व कल्याणकारी है और तुम बच्चों को भी सर्व कल्याणकारी कहा जाता है। बाप का रूप भी अति सूक्ष्म है, तुम आत्माएं भी अति सूक्ष्म रूप वाली हो। बाप को ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। तुम आत्माएं भी मास्टर ज्ञान स्वरूप, मास्टर प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हो। अब जो मैं, ये मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप को हमें अपने अंदर फिर से इमर्ज करना है, और उसको इमर्ज करने के लिए हमें इस अंतर्मुखता की आवश्यकता है, अथवा एकांत। एकांत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जाकर के कोई कोने में अकेले बैठ जाएं, परंतु आत्मा स्वयं में तो अकेली है ना, मैं और मेरा बाप। बाप से बातें करें, जो बाप हमें सुनाता है उन बातों को हम अच्छी रीत से मनन चिंतन करके अपने जीवन के कर्मों में लाते रहे, तब हमें अनुभव होगा कि ये हमारी ब्राह्मण जीवन कितनी श्रेष्ठ जीवन है, कितनी महान जीवन है। बाबा कहते हैं संगम युग, चारों युग के अंदर, सारे ड्रामा के अंदर यह समय बड़ा ही कीमती है, मूल्यवान है। और ऐसे मूल्यवान समय में बाबा हमें कितना ऊंचा मूल्यवान बना रहे हैं। इन्हीं बातों को हम बार बार अंदर में स्मरण करते, भले हम बहुत सी बातें सुनते हैं, लेकिन हमें देखना है सारे दिन के अंदर क्या क्या मेरे विचार चलते हैं, श्रेष्ठ विचार कितने चले, और उन श्रेष्ठ विचारों से मेरे कर्मों में क्या क्या श्रेष्ठता आई, उन श्रेष्ठ कर्मों के आधार से हमने कितनी श्रेष्ठ सेवा की, कितनों को सुख दिया, बाप का परिचय दिया और बाप से वर्षा लेने के अधिकारी बनाया। ऐसे ऐसे अपने अंदर स्मरण करते हुए अपने को ऊंच बनाने का प्रयत्न करे, मन हमारा एकाग्र होता जाए, जिससे हमारी जीवन में एक रस स्थिति। अभी बाप का पांचवा कदम जो हमें स्मृति दिला रहा है, अचल अडोल एक रस स्थिति बनी रहे। जब ऐसी स्थिति है तो बेफिक्र बादशाह है। सदा हम बाप के कदम पर कदम रखते चले और उसकी सहज विधि, जबकि अब बाबा के हर कदम का फिर से हमें स्मृति दिलाई जा रही है और उसके लिए स्पष्टीकरण भी मिलता जा रहा है, उन्हीं बातों पर हम अंदर अपने से सोचकर अपना बुद्धि योग बाप से पूर्ण रूप से जुटा के रखें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पूरा प्रयत्न करें। ओम शांति।
Thank you.